हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। एक बार सब लोग आंख बंद करके हृदय से पुकारिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। एक और बार जो हमारे साथ नहीं आ चुके हैं, नहीं आ सकते हैं, उन सब के लिए प्रार्थना के रूप में पुकारिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कुशावर्त धाम की। हम बहुत ही पवित्र स्थान पर यहां पधारे हैं। आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये जगह बनाई गई है। हाउ मच डिवोशन एंड डेडिकेशन मस्ट हैव गॉन थ्रू दिस प्लेस। कितना डेडिकेशन गया होगा इस जगह में बनाने के लिए। जिस प्रकार से बनाई गई है आप समझ सकते हैं कि इसका पवित्र कितना है। यहां पर बहुत गहरा पानी है, कुशावर्त का जो है दो कदम उतरेंगे तो बहुत गहरा पानी है, इसलिए उन्हें बंद करके रखा हुआ है। तो इस जगह पर जगह जगह पर कोनाडे में आपको अलग अलग मूर्तियां दिखेंगी ठाकुर जी की, अलग अलग विग्रहों की, देवियों की, देवताओं की। ये उस चीज का प्रतीक है क्योंकि यहां पर सब देवताओं ने आश्रय लिया है। खास करके जब सिंह राशि में गुरु प्रवेश करते हैं और यहां पर मेला भरता है कुंभ मेला, तो कुंभ मेला के साथ 12 महीने तक यहाँ पर बहुत प्रकर्ष बहुत ही तीव्रता से यहाँ पर देवताओं का निवास होता है। और छोटी सी कथा आपको बताएंगे यहाँ की। यहाँ पर आकर सबसे पहले गोदावरी जी ने दर्शन दिया और यहाँ पर गौतम ऋषि ने स्नान किया और वो गौ हत्या के पाप से मुक्त हो गए हैं। इसका मतलब ये होता है कि इस जल का स्पर्श होने से गौ हत्या का पाप भी नष्ट हो जाता है। अनेक हत्या जो है वो बहुत ही गहन मानी गई है, बहुत पाप संचय माना गया है। जैसे कि किसी असहाय व्यक्ति को मारना, बूढ़े व्यक्ति को, बालक को, स्त्री को, इस तरह से भी गौ की हत्या को भी बहुत ही भयंकर माना गया है। क्योंकि गौ के शरीर में, जैसे मैंने सुबह बताया कथा में, कि सारे देवता सारे तीर्थ धाम गौ के अंदर निवास करते हैं, उनके पैरों में, उसके वो क्या कहते हैं उसको, हम हाँ, उसमें उसके भुजाओं में, उसके शरीर में विष्णु का निवास है। यहाँ तक कि उसके जो विष्ठा है जिसको हम गोबर कहते हैं, हाँ शेण जिसको मराठी में बोलते हैं, उसमें लक्ष्मी का निवास है। इसलिए ऐसे कहा गया है कि गोबर से बनाया हुआ धूप अगर हम घर में लगाते हैं तो घर में लक्ष्मी का निवास समृद्धि बढ़ जाती है। इतनी शक्ति है उसमें। गोमूत्र के अंदर भी देवताओं का निवास है। यहां तक कि गोमूत्र का स्पर्श होने से हमारी आत्मा की शुद्धि हो जाती है। गौ के द्वारा निकलने वाली हर वस्तु पवित्र मानी गई है। यहां तक कि गौ को आप स्पर्श करेंगे, उसके पीछे से हाथ घुमाएंगे तो भी अनंत कोटि पाप नष्ट हो जाती है। कितनी शक्ति है गौ के अंदर। इसलिए गौ को बड़े आदर से, सम्मान से, भक्तिपूर्वक हमको अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए। और उसके आगे ब्राह्मण हत्या, जो ब्राह्मण है सच्ची में, जन्म से नहीं, जो अपने कर्म से, गुणों से, योग्यता से, ज्ञान से, शुद्धिकरण से, आचार विचार से, सिद्धांत सदाचार से श्रेष्ठ जीव है, ब्राह्मण के होने के योग्य है, दया क्षमा शांति और शांति मार्जव है वच 9 गुण बताए भगवद्गीता में ब्राह्मणों के, तो ऐसे ब्राह्मणों की हत्या करना ये भी बहुत बड़ा पाप माना गया। और तुलसी जी की प्रदर्शना करने से ब्रह्म हत्या को भी हम नष्ट कर सकते हैं, ब्रह्म हत्या के पाप को। क्या कहते हैं, यानी कानी च पापानी ब्रह्म हत्याति कानी च तानी तानी प्रणश्यंती प्रदक्षिणा पदे पदे। इस प्रकार से कई हत्याएं मानी गई है। तो सबसे भयंकर हत्या जो है, हम सोचते हैं कि केवल जान से मारना को हत्या कहते हैं, लेकिन भावनाओं को दुखाना भी हिंसा अनेक स्तर पर होती है। शरीर के स्तर पर होती है, भावनाओं के स्तर पर होती है, मन के स्तर पर होती है, सामाजिक स्तर पर होती है, बौद्धिक स्तर पर होती है, और फिर आत्महा यानी कि आत्मा का भी हम अपराध कर सकते हैं। तो इन सब अपराधों में ऐसे कहा गया है कि जब वैष्णव अपराध हम करते हैं, जिन लोगों ने अपना जीवन भगवान के नाम के प्रचार हेतु समर्पित किया है, केवल वो भक्त नहीं जो अपने आप को भक्त समझते हैं, उन वैष्णवों की निंदा करना जिन्होंने अपना जीवन भगवान के नाम दूसरों को प्रचार करने में समर्पित कर दिया है, पूर्णतः काया वाचा मने, उन वैष्णवों के भावनाओं को भी ठेस लगाना, इसको वैष्णव अपराध माना गया। सूक्ष्म भावना से भी उनकी निंदा करना, उनको देखकर अप्रसन्न होना, उनको देखकर अनदेखा करना, उनको देखकर क्या कहते हैं ना उसको, स्वागत नहीं करना उनका, और उनके भावनाओं को टोकना, उनको कठोर शब्दों से कठोर वचनों से उनको दूषण देना, ये सब भगवान को बहुत असंतुष्ट करने वाली बात है। इसलिए हमको ध्यान में रखना चाहिए कि सारा सब अपराध आप कर सकते हैं, उसके लिए शास्त्र में कई जगह उपाय बताए हैं, कर्मकांड में कई उपाय बताए हैं, क्या क्या कर सकते हैं, ये करने से क्या होगा, ये क्या तो इस किस कैसे क्या करने से बच सकते हैं। लेकिन वैष्णव अपराध एक ऐसी वस्तु है जो सबसे भयंकर है, जो हमारे जन्म जन्मों से, जैसे हम कुशावर्त में आते हैं उस पानी को स्पर्श करते हैं, जन्म जन्मांतर के पाप से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन वैष्णव अपराध करेंगे तो जन्म जन्मांतर में जितनी भक्ति की है और जितनी भक्ति में प्रगति की है वो सब नाश हो जाता है। आप समझ सकते हैं कितनी भयंकर चीज है ये। एक अनायास पाप कर्म इकट्ठा करते हैं और नदी में स्नान करते हैं तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन भक्ति करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। पाप पुण्य तो कभी कभी स्वतः हो जाते हैं, अनजाने में किसी अंधे को रास्ता क्रॉस कर दिया तो पुण्य हमारे हिस्से लग जाता है। तो पाप पुण्य इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं है, पुण्य संचय करना भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भगवान की भक्ति में, भगवान के नाम में, भगवान की सेवा में अथक प्रयत्न करने के पश्चात त्रिगुणों के विरोध के आगे जाकर, जैसे कि नदी का प्रवाह इस तरह हो रहा है, आप वहां तरह उस तरह तैर रहे हैं, स्विमिंग अगेंस्ट द करंट, इस प्रकार से भक्ति में प्रगति होती है। और वो जन्म जन्म में करने के पश्चात बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञान मान माम प्रपद्यन्ते, ऐसे ज्ञान प्राप्त होता है और वैष्णव अपराध करेंगे तो सब एक झटके में खत्म हो जाता है। इसलिए सब भक्तों को वैष्णव अपराध से बचना चाहिए, और कहीं भी हमारे साथ में जो भी भक्त चल रहे हैं या हमें पता है और कहीं हमारे संपर्क में है, उनको भावनाओं में भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि वो भगवान स्वयं अपने पर लेते हैं। ही टेक्स ऑन हिमसेल्फ पर्सनली, इट इज ऑफेंस टू मी ही फील्स। और जो वैष्णव का अपराध होता है तो भगवान भी उसको माफ नहीं कर सकते, भगवान भी कहते हैं कि हम उनको माफ नहीं कर सकते। तो क्या करना होगा, उसी भक्त के पास जाना पड़ेगा जिसका अपराध किया है, जब वो क्षमा करेंगे तो भगवान भी क्षमा कर सकते हैं। तो यहां पर गौतम ऋषि ने गौ हत्या के पाप से मुक्ति प्राप्त की है, हम सबको भी उसी भावना से, हमने भी अनंत पाप किए हैं अनंत जन्मों में, जाने अनजाने में, बचपन में, अज्ञान में कई पाप हम कर चुके हैं और बार बार करते रहते हैं, हमारी भोग वासना की वजह से लिप्त होकर हम कार्य करते रहते हैं शरीर को तृप्त करने के लिए। तो इसलिए हमको बार बार इस जल का स्पर्श करते समय भगवान की कृपा याचना करनी चाहिए। तो यहां पर गोदावरी फिर लुप्त हो गई है, कहीं प्रवाह नजर आ रहा है आपको, नहीं आ रहा? यहां पर एक, आप जहां बैठे हैं उसके निचले स्तर पर उस कोने में आपने देखा, कुछ लोगों ने देखा है, कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा, हम यहां से कथा खत्म करेंगे तो आप दर्शन कर सकते हैं। वहां पर शेषशायी विष्णु भगवान का स्थान है, और आश्चर्य होगा आपको, उनके जहां पर उनका आसन है, शेषशायी भगवान जो है वो शयन कर रहे हैं, और जो अनंत शेष है, बलराम जी के अवतार हैं अनंत शेष, जो शैया बने हुए भगवान के ऊपर, भगवान के लिए, और छत्र बने हैं उनके ऊपर, उनके शैया के नीचे से निरंतर जल प्रवाह निकल रहा है। आप देखिए जल निकालिए फिर भर जाएगा, वो गंगा जी का स्रोत है, गोदावरी जी का। और उनके चरणों में चिरंतन काल के लिए लक्ष्मी जी चरण सेवा कर रही है, वो पाद सेवन के आचार्य हैं। भगवान की नवदा भक्ति में जो प्रहलाद जी ने हमको सिखाया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु पाद सेवनम, नहीं श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे, पूजन सखी जन आत्म निवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। तो पाद सेवन ये नवधा भक्ति की एक महत्वपूर्ण विधि है, इसमें लक्ष्मी जी प्रधान आचार्य है, उनके समान चरणों की सेवा भगवान की कोई नहीं कर सकता है। और श्रवण और कीर्तन ये इस नवधा भक्ति के प्रमुख अंग है, जिनसे ही आगे के सात अंगों का विकास होता है। और अंतिम अंग जो है आत्मनिवेदन, यानी कि अपने आप को काया वाचा मने तीनों स्तर पे भगवान को समर्पित करना, जिसके आचार्य बलि महाराज है। बलि महाराज ने सब कुछ खोने पर क्या किया, अपने शीश को, अपने अहम को, अपने आत्मनिवेदन भगवान के चरणों में कर दिया। तो बलि महाराज आत्मनिवेदन के आचार्य है, श्रवण के आचार्य परीक्षित महाराज है, कीर्तन के आचार्य सुखदेव जी है, स्मरण के आचार्य कौन है, प्रहलाद जी महाराज। इतने कष्ट में भी उन्होंने कभी भगवान का स्मरण नहीं छोड़ा। तो वहां पर लक्ष्मी जी भगवान के चरणों की सेवा कर रही है, उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं, ब्रह्मा जी विराजमान है, और दो व्यक्ति और भी विराजमान है, वो है जय और विजय, जो वैकुंठ के द्वारपाल है। जो जय और विजय उन्होंने सनत कुमारों का, चार कुमारों का अपराध किया था, जब वो वैकुंठ चले गए थे चार कुमार, उनकी विशेष कथा यह है कि अभी मुझे रुतिन ने पूछा था, नहीं जयत्र ने पूछा था कि ब्रह्मा जी पहले हुए कि कौन पहले हुए, शिव जी पहले हुए। इसकी कथा हम बताते हैं कि जब सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी कर रहे थे, तो उनका काम था निर्माण करना, तो निर्माण कार्य जो रजोगुण में होता है, तो उनका कॉन्सेंट्रेशन था कि निर्माण किया जाए, बस प्रोडक्शन शुड गो ऑन। तो प्रजापतियों का निर्माण करते हैं, दक्ष प्रजापति और कश्यप सब प्रजापतियों को जन्म देते हैं, उनके द्वारा अनेक योनियों का निर्माण होता है। तो वो नारद जी को जन्म देते हैं, नारद जी जन्म से ही भगवान के भक्त बन जाते हैं, वीणा लेते हैं और चले जाते हैं, हम निर्माण नहीं करेंगे कुछ हम तो भगवान की सेवा में जीवन को अर्पण करेंगे। तो ब्रह्मा जी को इतना अच्छा लगता नहीं, लेकिन ठीक है चलो एक एक पुत्र हमारा सन्यासी बन रहा है। फिर वो चार पुत्रों को जन्म देते हैं, सनक सनातन सनंदन और सनत कुमार। और वो चार कुमार अपने बड़े भाई से संग करते हैं और उसी विरक्ति को पाते हैं, उनको भी कोई निर्माण करने की, विवाह करने की या संतति उत्पन्न करने की इच्छा नहीं रहती, तो अपने भैया के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। वो इतने इतने संन्यस्त होते हैं, इतने विरक्त होते हैं कि वो योग बल से अपने शरीर को 4 साल के उम्र तक ही सीमित रखते हैं। उनका शरीर जो है वो 4 साल के ऊपर दे जाता था। हाउ इज व्हाट इज एज, 5 साल के हैं हमारे जयत्र, इससे भी छोटे उम्र में, क्यों कारण क्या है इसका कोई बता सकता है, क्यों ऐसा क्या थे, विरक्त थे ना वो पहले से, विरक्त थे ही पहले से, तो ये और एक करने का क्या कारण था, तो बता सकते हैं, नो कंपल्शन फॉर पेरेंट्स, गुड लॉजिक। और कोई गेस वर्क, टू अवॉइड अट्रैक्शन फॉर अपोजिट सेक्स। 4 साल के बालक के अंदर कोई काम वासना नहीं होती, उस शरीर के अंदर वो सब अवयव है भाई, लेकिन उसके अंदर एक्टिविटी नहीं है, देयर इज नो एक्टिवेशन। जैसे हमारे पास मोबाइल है, हम लेते हैं तो उसमें कोई पावर नहीं होती, जब वहां से एक्टिवेट होता है तो फिर वो चालू हो जाता है। उस प्रकार से जब शरीर शिशु अवस्था से लेकर युवा अवस्था में पहुंचता है, पगोंड अवस्था से युवा अवस्था में पहुंचता है, तो उसमें धीरे धीरे काम वासना के बीज अंकुरित होने लगते हैं। तो उन्होंने सोचा कि अरे हमको जवान बनना ही क्यों है, जवान बनना ही नहीं, क्या ये अवस्था हमारे मन में आएगी नहीं, इसलिए वो अपने आप को 4 साल की उम्र में रखते हैं। और जब ये ब्रह्मा जी देखते हैं कि हमारे इन पुत्रों ने भी प्रजनन करने के लिए विरोध कर दिया है, तो ब्रह्मा जी को क्रोध आता है, और उस क्रोध के भावना में उनके भ्रुकुटियों के मध्य से, भ्रुकुटी मध्य यानी कि इस जगह से रुद्र फेंके जाते हैं, 11 रुद्र के मतलब 11 रुद्र निकलते हैं उसमें से, एक्सपल्शन। सबसे पहले रुद्र है शिवजी महाराज, शंकर जी भगवान, और 11वें रुद्र हैं हनुमान जी। ठीक है, तो इस तरह से शिव जी के पिताजी ब्रह्मा जी हैं, लेकिन पिताजी होने पर भी महादेव जी उनसे भी श्रेष्ठ हैं। कैसे श्रेष्ठ है? क्योंकि महादेव जी का कोई अंत नहीं है। महादेव जी एक विशेष तत्व है, हम जीव तत्व हैं, हम सब लोग जीवात्मा हैं, हमारे अंदर 50 गुण हैं, वो भी अंश मात्रा में, अणु मात्रा में है। और फिर विष्णु तत्व हैं, जैसे भगवान विष्णु हैं, उनके अंदर 60 गुण हैं, और श्री कृष्ण भगवान के अंदर 64 गुण हैं। वो परम पुरुषोत्तम परम भगवान है, सब वस्तुओं के निर्माणकर्ता भगवान कृष्ण है। तो बीच में आता है शिव तत्व, जिनके अंदर 55 गुण हैं, और शिव तत्व को जन्म मृत्यु का परिणाम नहीं है, उनका उदय होता है, प्रकट हो जाते हैं, लेकिन उनका मृत्यु कभी भी नहीं होता है। और वो जितने भी शिव जी हैं वो सब विष्णु का एक अवतार है सदाशिव, जो वैकुंठ लोकों में निवास करता है, सदाशिव भगवान। उन सदाशिव भगवान से शिव जी उत्पन्न होते रहते हैं, और हर एक ब्रह्मांड में एक शिव जी रहते हैं। और ब्रह्मा जी का स्वयं जन्म और मृत्यु है, ब्रह्मा जी को भी 3 ट्रिलियन 11 बिलियन सालों के पश्चात ब्रह्मा जी का देहांत होता है, ये भी सत्य की बात है। 3 ट्रिलियन 11 बिलियन ईयर्स के बाद में जो महाविष्णु की केवल एक सांस है, एक दीर्घ श्वास लेते हैं अंदर, तो उसका समय होता है 3 ट्रिलियन 11 बिलियन ईयर्स। और जब उसको छोड़ते हैं तो सब सृष्टि का महाप्रलय होता है। एक होता है मिनी प्रलय जो ब्रह्मा जी के एक दिन के बाद में होता है, और एक होता है महाप्रलय जो ब्रह्मा जी के 100 साल जीवन खत्म होने के पश्चात होता है। इस प्रकार से महादेव को जन्म जरूर देते हैं, जन्म देने का माध्यम जरूर बनते हैं, लेकिन महादेव जी तो महादेव जी हैं। तो यहां से गंगा लुप्त होती है, फिर गौतम ऋषि तपस्या करते हैं। देखिए कितने उनके अंदर धैर्य है और कितना निश्चय है। इतने हजारों साल तपस्या कर चुके हैं, फिर भी अभी और तैयार है जन कल्याण के लिए, और तैयार है। ऐसा नहीं चलो भाई मेरा काम हो गया, मेरा गोवत्ता का बाप मिट गया, चलो अभी दुनिया को जो करना है करने दो, नॉट नेसेसरी। संतों का भाव से नहीं थे, संतों का भाव कैसे रहता है? पर दुख दुखी। और हम सबका दुख क्या है? यस, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। हम सबका दुख ये नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा बच्चा नहीं पढ़ता है, और हमारे पास घर में माता जी बीमार है, और ये सब हमारा मूल रोग नहीं है। हमारा मूल रोग है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इन दोषों का हमको हमेशा अनुदर्शन क्यों ना हो, लेकिन करना पड़ता है कंस्टेंट, इसे कोई चुकता नहीं है। संतों के हृदय में जब वो संत वास्तव में बन जाते हैं, संत का लक्षण क्या है? वो है करुणा। पहले वो साधना करते हैं, फिर सेवा करते हैं, उसके फल स्वरूप उनके हृदय में भगवान की करुणा प्रकट होती है। भगवान के अंदर जो करुणा है वो संत के हृदय तब प्रकट होती है जब उसे संत रूप प्राप्त होता है, जब वो उस पद पर पहुंच जाते हैं, तब स्वतः है उनके हृदय में करुणा उत्पन्न होती है। तो वो उसके वजह से लोगों के दुख के कारण हमेशा पीड़ित रहते हैं, वो अपने भजन में मस्त रहते हैं, लेकिन लोगों का दुख देखते हुए। कितने हजारों करोड़ों लोग इस दुनिया में अभी भी काम वासना में और भोग लेने में व्यस्त हैं, और जीवन के उद्देश्य को खो चुके हैं, और तड़प रहे हैं जन्म मृत्यु के भयंकर जंजाल में। ये सोचकर वो उनके कल्याणार्थ कार्य करते हैं। नारद मुनि जी भी विवाह नहीं करते, क्यों? क्योंकि उनको जाना है सब जगह पे, पीड़ा लेकर राम का, भगवान का, गोविंद का नाम लेकर सब जगह प्रचार करना है, देवताओं के पास जाना है, तो भोगों से अलिप्त करना है उनको, पाताल में जाकर राक्षसों को भगवान के द्वेष से परावृत्त करना है, पृथ्वी पर आकर हम सब लोगों को भगवान की भक्ति के लिए अनुकूल प्रेरणा देनी है, क्योंकि हमारे पास अनुकूल स्थिति यहाँ पर है। ये सब कार्य सब जगह जाकर अलग अलग प्रकार से अलग अलग रूप से नारद मुनि करते रहते हैं। वैसे ही गौतम ऋषि इसी बात पर रुकते नहीं कि हमारा स्नान हो गया है और गौ हत्या से हम मुक्त हो गए, चलो अभी हम अपने भजन के लिए फ्री हो गए, फिर तपस्या करते हैं। और इस बार विष्णु भगवान की तपस्या करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, तो विष्णु भगवान प्रसन्न होकर अपने सुदर्शन चक्र को आह्वान करते हैं, और यहां से आप आगे जाएंगे, हम परसों लास्ट दिन जाएंगे वहां पर तपोभूमि में, चक्र को भेजते हैं और वहां पर वो चक्र जमीन को आघात करते हैं, और वहां से फिर वो गोदावरी जी प्रकट होती है, और वहीं पर उसका कपिला नदी से संगम होता है, कपिला गोदावरी का संगम है, और वहां से वो कवायत होकर फिर आगे जाकर अलग अलग देशों में जाती है, साउथ इंडिया में, वहां से गंगा सागर गोदावरी भगवान समुद्र को, बंगाल को, उपसागर को मिलती है। तो चक्रतीर्थ कहते हैं उस स्थान को जहां पर चक्र का आघात हुआ था। वहां पर आज भी नदी का पानी गोलाकार घूमता है कुछ समय के लिए, और फिर आगे सीधा प्रवाहित होता है। तो ये बहुत ही अद्भुत चीजें हैं। लोग समझते हैं भगवान है नहीं है, कहाँ है भगवान, है तो कहाँ पर है, ये क्यों आतंक हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। लेकिन भगवान को देखने के लिए भी योग्यता होनी चाहिए। हाँ, अगर हमको अभी आज के अभी के हमको प्राइम मिनिस्टर को मिलना है, क्या मिल सकते हैं क्या? पता नहीं कितने महीने रुकना पड़ेगा आपको, या शायद रुकना ही पड़ेगा जिंदगी भर। एक दुनिया के, एक राज्य के, एक देश के प्राइम मिनिस्टर जो भी मर्त्य है, जीवन मृत्यु के बंधन में फंसे हुए हैं, ऐसे व्यक्ति को मिलने के लिए भी हमको बहुत योग्यता को अपनाना पड़ता है। वी हैव टू बी क्वालिफाइड। तो हम सोच रहे हैं कि हम भगवान को अगर अभी दिखेंगे तो मानेंगे, नहीं तो हम नहीं मानते उनको। कितनी मूर्खता की बात है, सच अ फुलिश स्टेटमेंट। अगर उनको देखना है, अरे भगवान को तो भूल जाओ, अगर आपको इंद्र को देखना है तो भी बहुत तपस्या करनी पड़ेगी। आगे कथा में आएगा, बताएंगे आपको पंचवटी में, कि भगवान की जो देवताएं हैं उनको देखने के लिए भी बहुत पुण्य कर्म और तपस्या करनी पड़ती है, तब जाकर उनके लोकों में जाने को हम योग्य बन जाते हैं। रावण ने तो उसके बिना सीढ़ी बनाने का प्रयास किया था अपने शक्ति से, लेकिन सफल नहीं रहे वो स्वर्ग लोक तक पहुंचने में। मतलब वो जाए खुद तो गए थे, लेकिन सारे राक्षसों के लिए वो सोचा कि चलो बिना पुण्य किए सबको सीढ़ी बांध देता हूं और सब अपने आप चले जाएंगे स्वर्ग लोक में, और स्वर्ग लोक में जितने भी देवता है सबको पाताल में भेज देंगे, लेकिन सफल नहीं रहे वो। स्वयं अपने बल से गए थे, सबको परास्त करके आए। तो देवताओं का दर्शन करने के लिए भी हम योग्य नहीं है। तो देवताओं के देव जो है, महादेव, महादेवों के भी देव जो है, अखिल ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण भगवान परम पुरुषोत्तम, उनको देखने के लिए अगर हमको कितना प्रयास करना पड़ेगा। और वो ना योग से वश में आते हैं, ना धन से आते हैं, ना विद्या से आते हैं, ना तपस्या से आते हैं, ना दान पुण्य से आते हैं, ना तीर्थ यात्रा से आते हैं, ना किसी चीज से वो प्रभावित नहीं होते। वो केवल प्रेम के भूखे हैं, जो उन पर प्रेम करते हैं उनके वश में आ जाते हैं। जब कोई प्रेम करता है तो वो ताली बजाते हैं, वो फिर नाचने लगते हैं, है ना, जैसे गोपियां ताली बजाती हैं तो कन्हैया जी नाचते हैं, बोले ऐसे नाचो, फिर ऐसे नाचते हैं, बोले ऐसे एक्शन करके दिखाओ, तो वैसे करके दिखाते हैं। जो जो चाहे करा लेते हैं उनसे, क्यों? क्योंकि प्रेम के वश। वो कोई ऐसे योगी और ज्ञानी और पंडिता और कोई धनवान और सौंदर्यवती ऐसे कोई नहीं थे, वो तो गंवार लड़कियां थी, लेकिन प्रेम था भगवान के लिए उनके प्रति। तो इसलिए भगवान को मानना है तो कई तरीके हैं जिससे हम भगवान को देख सकते हैं। ऐसे अद्भुत चीज कैसे हो सकती है? अभी आप देखिए, क्षीर सागर में लेटे हुए भगवान जो है, शेषशायी भगवान, उनके चरणों से आ रहा है ना पानी? कहीं देखा आपने कनेक्शन खोद के देखा है क्या किधर? नहीं आ रहा है पानी उनके चरणों में। पुजारी ने कहा आप पानी निकालो, मैंने तीन बार निकाला तो फिर तुरंत भर गया वो। बहुत हल्की धारा आ रही है, लेकिन आ रही जरूर। ऐसे ही हमारे यहाँ पर मुंबई में बहुत ही पवित्र स्थान है, किसी को मालूम है? बाणगंगा, इतना दिव्य स्थान है मुंबई के अंदर, इतने भयंकर माया नगरी के अंदर भी एक स्थान है जहाँ लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी को गायत्री जप करने के लिए मीठे पानी की आवश्यकता थी, क्योंकि सब जगह खारा पानी था समुद्र का। लक्ष्मण से कहा उन्होंने कि लक्ष्मण मुझे गायत्री जप करना है, आचमन करने के लिए शुद्ध पानी चाहिए। तो उन्होंने तुरंत बाण पे मंत्र बोलकर गंगा जी का आह्वान किया और वहीं पहाड़ पर बाण लगा दिया। वो पहाड़ से मीठे पानी का स्रोत आ भी आ रहा है। हाँ, एक मिनट के अंदर दो लोटे भर सकते हैं, इतना तेजी से पानी आ रहा है, और कोई तुम्हारा बिस्लेरी हिमालया उसको कम्पीट नहीं कर सकता है, इतना शुद्ध पानी वहां से आ रहा है। साइंटिफिकली आप उसको टेस्ट करके देख सकते हैं, इतना मीठा और शुद्ध और रुचि संपन्न पानी आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो पहाड़ के बीच में इतना बड़ा जलाशय, इससे कम से कम चार गुना बड़ा है और गहराई में है, और पूरा शुद्ध जल भरा हुआ है उसके अंदर। कैसे कह सकते हैं भगवान नहीं है? सब चमत्कार हमको दिखाई पड़ रहे हैं हमारे आंखों के सामने। तो इसलिए हम सभी लोगों को धाम में आकर हमारी श्रद्धा को पुष्टि करना चाहिए। इसमें और एक छोटी सी कथा आती है शास्त्र में, वो जो है देवासुर संग्राम की। देवासुर संग्राम होता रहा, देव और असुर झगड़ते रहे और दोनों पर त्रस्त रहे उनके द्वंद्व से। तो दोनों ने प्रयास किया कि हमको अमृत मिलना चाहिए। तो दोनों ने सोचा कि एक दूसरे की सहायता के बिना अमृत नहीं मिल सकता है, तो उसने उन्होंने सुलह कर ली और सोचा कि हम लोग अभी समुद्र मंथन करेंगे। तो मंदार पर्वत लाने का निर्णय किया गया, तो मंदार पर्वत ना देवता उठा सके ना राक्षस उठा सके। तो फिर वहां पर अजीत नाम के भगवान के अवतार हुए, उन्होंने पहाड़ वहां पर लाके दिया। फिर उसको मंथन करने के लिए, मंथन के दंडे के तरह कोई उनको स्थिर नहीं कर सके, तो भगवान ने कूर्मा अवतार लिया, और कूर्मा अवतार लेकर भगवान ने उनको अपने पीठ पर स्थिर कर दिया। और अजीत जी भगवान जो थे विष्णु के अवतार ऊपर बैठ गए उसके, उसको स्थिर और ऊपर से स्थिर करने के लिए, और वासुकी नाक से वो मंथन की रस्सी बनाई गई और उन्होंने उसका मुख जो है वो बोला कि देवताओं की ओर दे दो, हम पूछ पकड़ेंगे। देवताओं ने मांग लिया, तो जब ये मंथन होने लगा तो सब मुंह से अग्नि और विष का भयंकर प्रभाव होने लगा, तो फिर वापस उनमें झगड़ा हो गया कि नहीं हमारे पास मुंह नहीं चाहिए, हमारे पास मुंह ले लो। ऐसे होता है सब राक्षसों का। तो फिर जब मंथन होता है तो सबसे पहले उसमें से हलाहल भयंकर विष जो है, जिसकी कोई आज के समय में विष की कोई तुलना नहीं कर सकते, ऐसे भयंकर विष जो है जिसकी बाष्प से भी जीव जीव का नाश हो सकता है शरीर का, उसका स्पर्श करने से या पीने से नहीं, उसके बाष्प से, वेपर्स कमिंग फ्रॉम दी हलाहल हलाहल पॉइजन, ऐसा भयंकर जब होता है विष उत्पन्न होता है तो सब लोग भाग जाते हैं। तो फिर भगवान शंकर वहां प्रकट होते। देखिए शंकर जी का क्या स्थान है, हाँ सभी देवता भाग गए, ब्रह्मा जी इंद्र वरुण सोम सब भाग गए, यहां सब राक्षस भाग गए, और जो विष जो था वो जब प्रकट हुआ था वो विष वैसे होना भी अपने आप एक जगह पर होना भी इस विश्व के लिए बहुत हानिकारक था। तो उस समय क्या हुआ, शंकर जी को बुलाया गया, क्योंकि एक ही ऐसे व्यक्ति थे पूरे ब्रह्मांड में जो उस विष के लिए कुछ कर सकते थे, उसका उपाय कर सकते थे। तो फिर शिवजी ने अपने योग बल से, तपो बल से, भक्ति के बल से उस सारे हलाहल विष को अपने कंठ पर ही रोक दिया, नीचे नहीं उतरने दिया, इसलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। और जब वो उस विष को प्राशन कर रहे थे, इस भयंकर विष को, तो कुछ बूंदे जो गिरी वो वहां पर कोई सांप बिच्छू तो कोई कीटक जब थे जिन्होंने वो ग्रहण कर लिया, फिर उनकी योनिया जो है वो विषैले कीटक और सांप और बिच्छू बन गए, वहीं से उनको विष प्राप्त हुआ। फिर सब शांत हो गया, फिर देवता सब वापस इकट्ठा हो गए, फिर मंदार पर्वत को खड़ा किया गया, फिर कुर्मजी गए, फिर अजीत जी ऊपर गए, फिर मंथन चालू हुआ। फिर समुद्र ने 14 रत्नों को अर्पण किया, जिसमें ऐरावत हाथी है, इसमें लक्ष्मी देवी है और कई ऐसे वर्णन आते हैं भागवत जी में। 14 रत्नों को भगवान ने दिया और उनको अपने अपने जगह पर स्थानापन्न किया गया। उसके पश्चात अमृत का निर्माण। ये कथा बड़ी एजुकेटिव कथा है, इसमें बहुत सारे सार है इस कथा के, क्योंकि अगर हमको अमृत प्राप्त करना है तो पहले विष को सहन करना पड़ेगा। हमारे अंदर जो पाप है वो एक विष की तरह है जो हमने जमा करके रखे, उनका नाश किए बिना हम भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते हैं। तो जब निकलते हैं जब पाप बाहर तो हमको कष्ट देते हुए निकलते हुए, जैसे हम लोग घर साफ कर रहे हैं तो क्या होता है, जब तक घर साफ नहीं कर रहे हैं एवरीथिंग इज फाइन, साफ करना चालू करो फिर नाक मुंह में से धूल जाएगी और छींक आएगी, कष्ट होगा, लेकिन वो सब सहन करने के बाद ही हमारा घर शुद्ध होगा साफ हो सकता है। उसी प्रकार से जब पाप निकलते हैं तो वो कष्ट देते हुए निकलते हैं, त्रस्त करते हुए कष्ट देते हुए वो निकलते हैं, उसको सहन करना पड़ता है, तो वो हलाल विष की तरह है। फिर उसके बाद में कई ऐसे वस्तु प्राप्त होती है हमारी भक्ति के अंदर, कीर्ति प्राप्त होती है, यश प्राप्त होता है, धन दौलत प्राप्त होती है, होता है, अच्छी संतान प्राप्त होती है, जिसमें जीव फंस सकता है। फिर से एक बार जिस कार्य के लिए निकले थे बीच में कोई ऐसे एक स्टेशन आ गए कि इसमें हम लोग फंस सकते, जैसे कि हम लोग पुनः निकले हैं हाँ और ट्रेन में बैठे हैं और कर्जत में उतरते हैं और वड़ा पाव खाने जाते हैं, वड़ा पाव में इतने मग्न हो जाते थे कि ट्रेन निकल जाती, हाँ गए कहाँ थे जाने के लिए और कहाँ फंस गए। उसी तरह से भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, एक जगह उतर गए, कौन सा स्टेशन था वो, यश और कीर्ति का, धन दौलत का स्टेशन था, वही मग्न हो गए भक्ति बाजू में देखे। तो उसको भी जब हम सहेंगे, ऐसा नहीं कि हमको केवल दुख को सहना होता है, सुख को भी सहना पड़ता है, हाँ यश कीर्ति को भी पचाना पड़ता है, हजम करना पड़ता है, उससे दिमाग में अहंकार बढ़ना नहीं चाहिए, दिमाग पर उसका असर नहीं होना चाहिए। हम लोग बोलते हैं मराठी में कि पैसा डोक्या छिल्ला है, मुझे क्या ऐसा अर्थ कहा दो कि उसका अहंकार से वो बत्त हो गया व्यक्ति, धन के अहंकार से, विद्या के अहंकार से, जन्म के अहंकार से, यश और कीर्ति फेम के अहंकार से। तो ये जब 14 रत्नों को भी हम लोग प्राप्त करने के बाद भी विचलित नहीं होते, तब जाकर भक्ति का जो अमृत है, प्रेम भक्ति का अमृत, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर अमृत प्राप्त हो गया तो तुरंत झगड़ा होने लगा कि अभी कौन लेगा उसको, तो देवताओं ने उसको छीन लिया और भागने लगे। तो उन्होंने 4 लोगों को इसका जिम्मेदारी दिया था, एक बृहस्पति और एक शायद गरुड़ देव और दूसरे थे वरुण और 4 देवता थे, उनको उसका तो वरुण जी उसको लेकर भाग गए, तो चार जगह राक्षसों ने उनके साथ युद्ध किया उसके लिए। और जब वो लेके भाग रहे तो कुछ जगह पर उसके कुछ छींटे गिर गए, तो यहां पर देवताओं का युद्ध हुआ उसके लिए। एक दूसरा हुआ इलाहाबाद प्रयाग में, तीसरा हुआ उज्जैन में, और चौथा हुआ हरिद्वार में। वो उस कुछ समय के लिए कुंभ रखा गया और युद्ध किया गया, तो रखने वखने में जो भी हिल गया वो कुछ बूंदे गिर गई उधर। तो ऐसे कहा जाता है कि कुछ कुछ तिथियां हैं, जैसे मुझे खाली यहाँ की तिथि याद है, यहाँ पर सिंह राशि में जब गुरु प्रवेश करता है तो यहाँ पर युद्ध हुआ था। तो उसी दिन आज भी उस जो जब वो सिंह राशि में बृहस्पति प्रवेश करते हैं तो वो अमृत जो है वो प्रकट हो जाता है, उसी को हम कुंभ मेला कहते हैं। कोई अर्ध कुंभ मेला होता है, कोई पूर्ण कुंभ मेला होता है। तो पूर्ण कुंभ मेला 12 साल में एक बार लगता है। तो ये जगह जो है आप जहां पर विराजमान है, ये कुंभ मेला का भी स्थान है। इसमें संत लोग कुछ विवाद भी करते हैं, कुछ लोग कहते हैं रामकुंड में कुंभ मेला का स्थान है, और कुछ लोग, लेकिन अधिक प्रमाण इस जगह का पाया जाता है कुशावर्त पे। यहाँ पर देवासुर संग्राम हुआ था अमृत के गलश प्राप्त करने के लिए, फिर मोहिनी रूप प्रकट हुआ। भगवान विष्णु ने अपने बहुत सुंदरता के प्रमाण के आधार पर मोहिनी रूप में रूपांतर किया अपने आप को। तो इस मोहिनी रूप को देखते हुए इतने सब लोग मोहित हो गए, कहने लगे आप ही सबसे श्रेष्ठ हैं, आप ही सबसे बुद्धिमान हैं, आप ही निर्णय कीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, पहले देवताओं के लाइन में बिठाया और वो उनको अमृत दे रही थी, तो अभी जो राहु थे वो आ गए उसमें बीच में देवता बनकर, और वो उन्होंने उनके मुंह में अमृत डाला, तब पता चला कि ये राहु है। तुरंत मोहिनी रूप होते हुए भी चक्र को उत्पन्न करके उसका शीश कट कर दिया, लेकिन तब तक उसके गले तक अमृत पहुंच गया था, इसलिए कटा हुआ गला जो है वो राहु जी अमर हो गए। उसी रूप में अभी विराजमान है आकाश में, उतना हिस्सा जो है अमर, नीचे का हिस्सा खत्म। फिर देवताओं को अमृत दिया और सब लोग, तो वो गरुड़ जी जो है, और एक अद्भुत उसकी कोट कथा है उपाख्यान, कि गरुड़ जी जब वो अमृत को लेकर जा रहे थे तो उन्होंने वृंदावन में जमुना किनारे एक कदम के वृक्ष के ऊपर वो कुछ बूंदे डाल दी उसके ऊपर, ये जानते हुए कि अभी द्वापर में अंत में जब कृष्ण भगवान आएंगे तो इस कदम पे चढ़कर कालिया को दमन करने के लिए जमुना में कूदेंगे, और कालिया के विष से सारे खत्म हो जाएंगे, पेड़ पौधे ये सृष्टि खत्म हो जाएगी, लेकिन ये रूप से जिंदा रहेगा इस पर भगवान चढ़ेंगे, अपने पाद स्पर्श से पुनित करते हुए उस पर चढ़कर जमुना जी में कूदेंगे। इस प्रकार से ये देवासुर संग्राम हुआ है, समुद्र मंथन हुआ है। हमारे हृदय के अंदर में मंथन होने के बिना बगैर भक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती है। जैसे दूध के अंदर मक्खन होता है, कोई बोलेगा सिद्ध करके दिखाओ, प्रूव मी दैट देयर इज मिल्क, देयर इज बटर इन द मिल्क, हमें अभी दिखाओ, बोला तो अभी कैसे दिखा सकते हैं, उसकी प्रक्रिया है, इज अ प्रोसेस। अगर श्रद्धा है तो आपको उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, यथावकाश उसमें से मक्खन निकलेगा, प्रकट हो जाएगा आपके आंखों के सामने। अब मंथन करेंगे दही जमा के उसी दूध का, आएगा अपने आप प्रकट हो जाएगा, फिर आपको विश्वास करना पड़ेगा। उसी तरह से हम बोलते हैं कण कण में भगवान समाए हुए हैं, देखना कैसे है उसकी प्रक्रिया है, उसके नाम का जप करना चाहिए, अपने जीवन को उनके सेवा में अर्पण करना चाहिए, तभी हमको कण कण में भगवान दिखाई पड़ते। जैसे हिरण्यकश्यपु ने पूछा था कहां है तुम्हारे भगवान, वो तो कण कण में है मेरे पिताजी, हर जगह समाये हुए, यहां वहां दिखते, इस खंभे में है, सब जगह समाये हैं, तो इस खंभे में भी है, अभी देखता हूं तुम्हारे भगवान क्या करते हैं, एक मुक्का मारते हैं और तुरंत वो खंभा भंग हो जाता है, उसमें से तत्क्षण भगवान पैदा होते हैं तत्क्षण। इसलिए इस खंभे को नरसिंह भगवान की माता कहा गया है, उगम स्थान, जन्म स्थान। भगवान इतने दयालु है, अपने भक्त का शब्द को सत्य करने के लिए कहते हैं कि वो खंभे की बात होने के पहले ही रेडी थे, नरसिंह भगवान के रूप में से तैयार थे, मेरे भक्त कहेगा और मैं आऊंगा वहां। कितना प्रेम करते हैं भक्त के ऊपर अपने, क्या क्या नहीं करते भगवान, इतना अद्भुत भयंकर अनाकलनीय रूप धारण करके वो रेडी है उधर, और इतना प्रेम करते हैं भक्तों पर कि ब्रह्मा जी भी उनके भक्त हैं, उन्होंने बहुत सारा वरदान देकर रखा है उनको, लंबी चौड़ी लिस्ट, इससे नहीं उससे नहीं इससे नहीं उससे नहीं, इस समय नहीं उस समय नहीं, इस जगह नहीं उस जगह नहीं, बड़ा लिस्ट बना के सैंक्शन कर दिया है, अप्रूव्ड। तो सबका आदर रखते हुए, सभी ब्रह्मा के वचनों का आदर रखते हुए कृष्ण भगवान नरसिंह भगवान बन के सबको बरकरार रखते हुए हिरण्यकश्यप का वध कर देते हैं। जो अपने आप को समझ रहा था कि मैं अमर हो गया हूँ, अभी मेरी कोई भी चीज, सब मरने की जो क्रिया है, कारण है, सब मैंने ऑलरेडी बंद कर दिया है. आई कांट डाई, नॉट क्वेश्चन, नो पॉसिबल. तो इस तरह से एक नई योनि बनाकर स्वयं नरसिंह ब्रह्मा जी कहते मेरे योनि में ऐसा कोई बनाए हुए योनि में ऐसा कोई जीव नहीं है. ऐसे अद्भुत रूप में भगवान आते हैं और हिरण्यकशिपु का वध कर देते हैं. तो जिनको भगवान बचाते हैं उनको कोई नहीं मार सकता, और जिनको भगवान मारना चाहते हैं उनको कोई नहीं बचा सकता. जब रावण का वध हो रहा था लंका में, तो पार्वती जी आई भाग भाग के, अरे स्वामी आपके परम भक्त का वध हो रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू. जिसको भगवान मारना चाहते हैं उसको बचा सकता है. हमारे सारे वर जो है वो सब फेल हो जाते हैं उस समय. हमने चाहे कितने वर दिए होंगे, तो एक फॉर्मेलिटी है, हम देते हैं. अब अभी देखते हुए इस वर को रखते हुए भगवान कैसे हमारे भक्तों को खत्म कर देते हैं. इस प्रकार से जब प्रहलाद जी को इतने भयंकर राक्षस के द्वारा, अनंत मार्गों के द्वारा माध्यम से मारने का प्रयास किया गया, कुछ नहीं हुआ, उसका एक बाल भी बांका नहीं हुआ, जख्म भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ उसको, यहां तक कि कोई दर्द भी नहीं हुआ. भगवान बोल रहे थे उनको, अरे प्रहलाद जी आपने मेरे लिए इतना कष्ट सहन किया, मैं आपका ऋणी हूं कि मेरे लिए आपने इतना कष्ट सहन किया. अगर आप बोलते यस पिताजी जो बोलेंगे आप मैं करूंगा, इतना खाली यस सर बोलने का जरूरत था बस, कोई आतंक नहीं होता था उनके जीवन में. लेकिन उन्होंने यस सर नहीं बोला उनको, मतलब मर जाऊंगा लेकिन यस सर नहीं बोलूंगा. इसे भक्ति कहते हैं. भक्ति मतलब केवल बैठ के भजन करना, यही भक्ति नहीं. भक्ति मतलब धाड़स, रेडीनेस फॉर टेकिंग रिस्क. जीवन में चैलेंजेस को भी स्वीकार करते हुए भगवान के चरण नहीं छोड़ना. उसको केवल हाँ पिताजी इतना ही बोलना था, बस यही उसकी रिक्वायरमेंट थी. तो पूरे तीनों लोगों का, ब्रह्मांडों का वो मालिक बनता था, सब शक्तियों के साथ, सब आदर सम्मान धन दौलत इज्जत यश कीर्ति सबके साथ बनता था, अनंत समय के लिए. हाँ, अगर आप में से, हम में से किसी एक को ऐसा प्रपोजल दिया जाए, हम क्या करेंगे, अरे छोड़ो यार भक्ति भक्ति सब, ये माला वाला छोड़ दो, कुशावर में डाल दो, अभी जाओ आनंद करो, बाद में कब मौका आएगा मालूम नहीं. अभी इतना धन की समस्या है, लोन है हमारे ऊपर, ना गाड़ी है ना कुछ है, ना घर छोटा पड़ रहा है, और ये तीनों लोगों का साम्राज्य दे रहे हैं, यस सर बोलने की हाली हाली, यस सर बोलना है बस, सब लोग टूट पड़ेंगे. लेकिन प्रहलाद जी नहीं बोले ऐसे, नो सर. हम सब लोग इस बालक से बहुत प्रेरणा लेनी चाहिए. हाँ, इतने कोमल अवस्था में उन्होंने अपने जीवन को भगवान के चरणों में अर्पण किया. इतना कष्ट होने पर भी उनको कष्ट का अनुभव ही नहीं हुआ, भगवान को दुख हो रहा था और भगवान से माफी मांग रहे. बोले भगवान मुझे कष्ट हुआ नहीं, बाहर से ठगा गए तो आपने पकड़ा नहीं, जैसे फूलों की गद्दी में झेल दिया आपने मुझे, जब सांप के पिट में डाल दिया तो सांपों ने मुझे काटा ही नहीं. विषैले सांपों के अंदर परमात्मा के रूप में आप विराजमान थे, उनको प्रेरणा ही नहीं दिया आपने काटने का, तो मुझे कुछ कष्ट नहीं हुआ. विष पिलाया गया तो विष का कुछ परिणाम ही नहीं हुआ, वो भी आपने ही कंट्रोल किया था, मैं तो कंट्रोल करता नहीं, मेरे इंटेस्टाइन्स और मेरे जठर के ऊपर. और आग में रखा गया तो मैं तो बैठा रहा और वो होलिका देवी जल गई, मैं देखता रहा ये क्या हो रहा है. कैसे भगवान है देखो, हाँ कष्ट का अनुभव ही नहीं हो रहा है और भगवान माफी मांग रहे हैं. कितना प्रेम है भगवान के और भक्तों के बीच में, दोनों के बीच में ये कंपटीशन है कौन अधिक प्रेम करता है. भगवान कंपटीशन कर रहे हैं कि मैं भक्त पर प्रेम करूंगा अधिक, और भक्त कहते नहीं मैं अधिक करूंगा, और ये कंपटीशन जो है देवासुर संग्राम की तरह चलते रहता है कंटिन्यूअस. तो इसलिए हम यहां पर धाम में आते हैं, इसी जगह को, इसी वस्तु को समझने के लिए, क्या है ये चीज भक्ति, क्या चीज से हम भगवान का दिल हमारे ओर आकर्षित कर सकते हैं. हाँ, इस दुनिया में इस सुंदर पुरुष को और सुंदर स्त्री को वश करने के लिए हम लोग क्या क्या ट्रिक्स करते हैं, हम क्या क्या योजना बनाते हैं, वो सारी योजनाएं अगर भगवान की ओर डाइवर्ट की जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा. किसी एक संत ने कहा है कि जितना लगाव और आकर्षण हमें भौतिक वस्तुओं में है, उतना ही प्रमाण में आकर्षण और लगाव अगर हम भगवान पे रखेंगे, मतलब रिप्लेस द प्लेस ऑफ अट्रैक्शन एंड अटैचमेंट, जस्ट पुट इट समवेयर एल्स, दैट्स ऑल. यहां से लेके वहां पर जितना हम भोजन पर आसक्ति रखते हैं उतना अगर भगवान पे रखेंगे, जितना शरीर के सुख के लिए आसक्ति रखते हैं उतना भगवान पे रखेंगे, जितना धन दौलत और कीर्ति को चाहते हैं उतना भगवान को चाहेंगे, ये सब वैसे करेंगे तो और जीवन में कुछ करना ही नहीं है. दैट इज ऑल, जस्ट रिप्लेस यूर ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप फ्रॉम माया टू कृष्णा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और करना कुछ नहीं है, कोई जंगल में जाकर गौतम ऋषि की तरह पर्ण सेवन जल सेवन वायु सेवन नो सेवन करने की जरूरत नहीं है ना, कोई परिवार को त्याग कर संन्यास्त होकर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, धन धनो छोड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जहां पर आप रह रहे हो वहीं रहो, आराम से रहो, मजे में रहो, केवल भगवान को जीवन में जोड़ दो बस। और जो भी कर रहे हैं अभी तक कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, खाना ला रहे हैं तो अपनी मर्जी से ला रहे हैं, अपनी पसंद से कपड़ा ला रहे हैं तो अपनी मर्जी से ला रहे हैं, घर ले रहे हैं तो अपने लिए ले रहे हैं। अभी सब काम जो है भगवान के लिए करना है। घर ले रहे हैं तो पहले देखना है घर में मंदिर के लिए सबसे बड़ी जगह कौन सी होगी, अगर वो योग्य होगी तो ये फ्लैट लेंगे, और यहां से मंदिर जाने के लिए योग्य होगा कि नहीं होगा वैसे करेंगे। बात वही है, घर लेना है वही पर म्यूनसिपालिटी में जाना है, टैक्स भरना है, सब कुछ करके नाम पे करना है, सब कुछ वही करना है। मन में क्या भावना है, ठाकुर जी का घर है, वही धन कमाना है, इसलिए वही मेहनत करनी है, सब कुछ जो कष्ट करना है वो करते रहना है। लेकिन वो आने के बाद में जो वस्तुएं घर पे आएंगी उसको पहले भगवान को अर्पण करना है, भगवान के लिए भोग लगाना है, भगवान की आरती पूजा में सेवा में वैष्णवों को बुलाना है, सत्संग करना है। अभी क्या करते हैं, पार्टी करते हैं ना हम लोग, वो पार्टी अभी बाद में भी कर रहे हैं, पार्टी बंद नहीं होती है, पार्टी लगातार चलती रहती है, ये भी पार्टी चल रही है लेकिन ये पार्टी के केंद्र स्थान भगवान है, इसमें जो भी आनंद हो रहा है वो भगवान को केंद्र स्थान में रखते हुए आनंद हो रहा है। तो केवल भगवान को जोड़ना है जीवन में। अब विचार हमारे इंद्रिय भोग का चल रहा है, फिर वो विचार भगवान के संतुष्टि का करना है, वही सब करना है, लेकिन केवल भगवान को जोड़ देना है। और सरलता से अगर भगवान को जोड़ना है बिना साया बिना कष्ट बिना प्रयास, तो हमको केवल भगवान के नाम को पुकारना है, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें तीन चीजें हैं, आचार्य कहते हैं मुख से स्पष्ट उच्चारण, कंजूसी नहीं, हाँ ऐसे बैठे हैं हरे कृष्णा मन कहीं और है, जोश नहीं है, अभी कहेंगे कि हमको झगड़ा करना है, उसने मेरे बच्चे के पलक पैर पर पैर क्यों रखा, तो इतनी जोर से आवाज निकलेगी, बताना नहीं पड़ेगा कि आप धीरे से बात करो जोर से बात करो, अपने आप बेस्ट वॉइस निकलेगी आपकी, है ना। ट्रेन में कोई आपको धक्का देंगे तो एकदम बेस्ट वॉइस निकलेगी आपकी, जितनी क्षमता है फुल मैक्सिमम वॉल्यूम निकलेगा आपका। तो हृदय से मतलब मुख से स्पष्ट रूप से भगवान को पुकारना है। किसी को अगर जो उस किनारे पे आपको पुकारना है तो आप बोलेंगे रमेश रमेश तो सुनाई नहीं पड़ेगा उसको, आपको सुनाई पड़ने के लिए उतने जोर से बोलना पड़ेगा, वहां तक आवाज पहुंचेगी तो उतना जोर से बोलना ही पड़ेगा, उस तरह से भगवान को सुनाई पड़ेगा। आर्त भावना से पुकारेंगे तो वॉल्यूम की जरूरत नहीं, आर्त भावना होनी चाहिए तो वो सुनते हैं। दूसरी बात, कानों से उसको सुनना है, मुख से बोल रहे हैं लेकिन कुछ और सुन रहे हैं नहीं, मुख से भगवान का नाम पुकारने से पश्चात कानों से हर शब्द को सुनना है, क्योंकि कली काल नाम रूपे कृष्ण अवतार, कली काले नाम रूपे नाम ध्वनि में ध्वनि जो आवाज उसकी निकलती है, कृष्ण जब बोलते हैं, राम जब बोलते हैं, नरसिंह जब बोलते हैं, तो उस ध्वनि के अंदर भगवान ने अवतार लिया है, उस ध्वनि को स्वीकार करना है कानों के माध्यम से। तो उस कानों के माध्यम से भगवान स्वयं प्रवेश करते हैं कहां, हृदय के आंगन में, हृदय के पटांगण में भगवान प्रवेश करते हैं। और हृदय को रोना चाहिए, क्या रोना चाहिए, कि भगवान हमसे हम आपसे कई जन्म हो गए अलग हो गए हैं, आपसे विभक्त होकर दुख भोग रहे हैं कष्ट भोग रहे हैं, इतना लत्ता प्रहार सहन कर रहे हैं माया का, फिर भी हम लोग जग नहीं रहे हैं, उस भावना से रोना चाहिए आपके मिलन के लिए आपके संयोग के लिए रोना चाहिए। तो मुख से बोलना कान से सुनना ध्यान से और हृदय में रोना, जब ऐसा जब करेंगे तो भागते आएंगे कौन मुझे पुकार रहा है। जैसे आप अगर आपकी बहुत सारी माताएं यहां बैठी हैं, सबके बालक है ना घर में आपके, तो थोड़ा रोते हैं तो आप लोग ठीक है कुछ खिलौना दे देते हैं फिर काम में लग जाते हैं, फिर थोड़ा और रोते हैं नया खिलौना दे देते हैं फिर अपने काम में लग जाते हैं। एक बार वो ऐसे रोता है जोर से कि आप खिलौना दिया तो फेंक देते हैं, और कुछ दिया वो भी फेंक देते हैं, सब कुछ फेंक देते हैं, तो आप तुरंत गैस वैस बंद करके भाग भाग के आते हैं, अरे चलो उसको गोद में लेते हैं और तुरंत दुग्धपान करते हैं। एक समय ऐसे आता है कि नथिंग विल वर्क, केवल माँ चाहिए अभी, तो माँ सब कुछ छोड़ के अपने आप को बालक को अर्पण कर देती है ना, करते ना आप लोग सब लोग। वैसे भगवान जब हम उनको पुकारते हैं तो धन भेज देते हैं, लो एक खिलौना लो खेलो उसमें आप मग्न हुए, भगवान चले जाते हैं, खेलते रहो आराम से। फिर यश देते हैं, फिर कीर्ति देते हैं, फिर मान सम्मान देते हैं, बहुत लोग उसमें फंस जाते हैं। यहां तक कि काम वासना को छोड़ देते हैं, लेकिन मान सम्मान को छोड़ नहीं सकते, कीर्ति प्रतिष्ठा पूजा उसको छोड़ नहीं सकते। वो सब कुछ देने के पश्चात हम फेंक देते हैं, नहीं चाहिए पूजा, नहीं चाहिए प्रतिष्ठा, नहीं चाहिए मान, केवल आप चाहिए भगवान, तो फिर भगवान स्वयं आ जाते हैं। समझते हैं, अभी खिलौने से खेलने का समय इनका चला गया, अब ये बचपन से बड़े हो गए, अभी पूजा प्रतिष्ठा मान सम्मान ये खिलौने उनको अच्छे लगते नहीं, अभी उनको मैं चाहिए, तो फिर स्वयं वैकुंठ कृष्ण गोलोक धाम सब छोड़कर हमारे लिए भाग भाग के आते। तो ये मुमकिन है, ऐसे नहीं कि हम लोग खाली कथा कर रहे हैं और सुनने को अच्छा लग रहा है, हम फ्रेश भी हैं और सुनने ले रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, ऐसे नहीं है। दिस इज ऑल रियलिटी, दिस इज अ फैक्ट। प्रयोग करके देखिए, संकट समय में कभी पुकार के देखिए, आपको उसका अनुभव मिलेगा, क्योंकि भगवान के नाम में भगवान उपस्थित है। इसलिए मैं आपको सबको हृदय से आह्वान करता हूँ, आप कोई जब नहीं करते होंगे, नहीं रुचि होगी या नहीं इच्छा होगी, आप शुरू कीजिए, एक माला से आरंभ कीजिए, दो माला करिए, चार माला करिए, बहुत समय भगवान ने दिया है, 24 घंटा दिया है, 8 घंटा 10 घंटा सोते हैं हम लोग उसमें, और बाकी बचा हुआ समय पैसा कमाने में खर्च करते हैं, करते कि नहीं, या तो पैसा कमाने के लिए जाने में और आने में अब बहुत समय खर्च करते हैं, है ना, पैसा कमाने की जगह जाने के लिए 3 घंटा और आने के लिए फिर 3 घंटा, कभी कभी 4 घंटा लगता है, 8 घंटा पैसा कमाने के लिए, और आते हैं फिर सो जाते हैं, नहीं सोते तो फिर भोग लेते हैं सोने के समय पे, यही अपना कार्य है, दिन में काम रात को भोग, इसी में चक्र में फंसे रहते हैं। समय बहुत है, लेकिन हमारी जहां इच्छा होती है वही हम समय लगाते हैं। आपकी इच्छा थी इसलिए आप लोग समय निकाल कर यहाँ पर आए, तो बोलते हैं क्रिसमस का समय है, पार्टी घर में है, मेहमान आने वाले हैं, कौन आएगा यात्रा में, इस समय नहीं आ सकते। इच्छा है तो सब कुछ समय निकलता है, और वो समय आपको भगवान की प्राप्ति के लिए दिया गया है। दिस इज कॉल्ड एज ह्यूमन टाइम, नॉट एनिमल टाइम, नॉट डेमिगॉड टाइम, दिस इज ह्यूमन टाइम। मनुष्य जीवन का समय जो है बड़ा कीमती है, इसके पल पल में और क्षण क्षण में हम भगवान के अधिक और अधिक नजदीक जा सकते हैं, इतनी शक्ति इस मनुष्य के जीवन के समय में है। चाहे आप धनवान हो या ना हो, सुंदर हो या ना हो, विद्या संपन्न हो या ना हो, कुछ भी हो या ना हो, हर अवस्था में हम भगवान को, हर क्षण एक एक क्षण में हम भगवान के पास 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 जा सकते हैं। इतनी शक्ति इस मनुष्य जीवन में है, उसको रियलाइज करना, साक्षात्कार करना उसका, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। ये तो हमारे बड़े पद का, हम किसी कंपनी के प्रमुख है, किसी जगह पर बड़े डायरेक्टर है, किसी जगह पर पत्र प्रधान है और प्रेसिडेंट है किसी देश के, सब व्यर्थ है, क्योंकि अंतिम में जब मृत्यु आएगा तो खड़े आदमी को आड़ा होकर जाना पड़ता है ना। सब जीवन में छाती ताल के चलते हैं, जब मृत्यु आता कैसे चलते हैं, फ्लैट 4 कंधों पर चलना पड़ता है, चाहे वो क्रिश्चियन हो या हिंदू हो, सबको बॉक्स में जाना पड़ता है। इसलिए मृत्यु के सत्य के सामने कोई ऐट नहीं सकता है, और मृत्यु के सामने जो ऐट सकता है वो कौन है, वो जीवन मुक्त जीव है, जो भगवान का भक्त है उसके सामने मृत्यु सलाम करती है, उसको दंडवत प्रणाम करती है, उसको छू नहीं सकती। यमदूत को यमराज ने आदेश देकर रखा है कि आप कहीं भी जाओ जहां पर भगवान का नाम चल रहा है वहां पर प्रवेश नहीं करना, डंडे पड़ेंगे आपको। कथा है बढ़िया जामिल की। तो तात्पर्य यह है कि जैसे ही भगवान का शरण ग्रहण करते हैं हम पूर्णतः निर्भय बन जाते हैं, 100% फ्री फ्रॉम ऑल एंग्जाइटी एंड ऑल फियर इन लाइफ, ऐसा है। सो इसलिए हमको इस जीवन के हर क्षण का उपयोग भगवान की भक्ति में करना चाहिए, नहीं तो हमारा जीवन व्यर्थ है, कोई मनुष्य जीवन होने के योग्य नहीं है। फिर हम पंछी बनेंगे, जानवर बनेंगे, कीड़ा मकोड़ा बनेंगे, फिर उसी भोग को लेते हुए जन्म जन्मांतर को बिताएंगे और लाइफ हमारा वेस्ट हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उषावर्त को साक्षी रखकर आप मन ही मन निश्चय कीजिए, किसी को बताइए मत, मन ही मन निश्चय कीजिए कि आप जब करेंगे भगवान को, नाम को पुकारेंगे, अधिक अधिक भगवान के नाम के जब कीर्तन में जीवन बिताएंगे, यही यहाँ पर निश्चय कीजिए, प्रार्थना कीजिए, कृपा याचना कीजिए कि इसका कार्य को सफल करने के लिए आप लोग शक्ति दे हमें, इन देवताओं को, गौतम ऋषि को, शंकर भगवान को, श्री विष्णु भगवान को आप याचना कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि हमें आप आश्रय दीजिए। हम सब पतित जीव हैं, हमारे अंदर कोई इच्छा नहीं है, हम जन्म जन्मांतर से भोग की लालसा में यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, जिवेर जिब्बेर लालसा यही इति उति धाय, सब जगह भाग रहे हैं, लेकिन हमें भगवत परायण होना है, इसलिए यहाँ पर प्रार्थना करना है। यहाँ प्रार्थना करने से हो सकता है ठाकुर जी की कृपा आप पर हो, आपके मन में नाम की प्रति रुचि उत्पन्न हो, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जय जय श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। आज की कथा यही हो गई ब्रह्मगिरी जाने के बदले में, क्योंकि बहुत पवित्र स्थान है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव स्थान है, इसलिए हमारा आसन यही जम गया। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। कुशावर्त धाम की, गौतम ऋषि की जय, भगवान शंकर की जय, श्री कृष्ण भगवान की, युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जै।